इंसान की फितरत और मनोवृत्ति जितनी जितनी हिंसक होती जाती है, जितना जितना वो संकीर्ण होता जाता है, उतना उतना हम भूल जाएं कि शांति भरे वातावरण में हम विचरण कर पाएंगे। और कब से हजारों हजारों बरस हो गए, तब भी अहिंसा के रास्ते को महत्ता दी गई। त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी, लेकिन हर युग में, हर दौर में हिंसा करने वाले या फिर संकीर्ण दिल वाले, अज्ञानता के अंधकार में विचरण करने वाले, नाना प्रकार के भ्रम और भ्रांतियों से युक्त लोग इसी धरती पर विचरण करते आ रहे हैं, और उनकी देन संसार को हमेशा से ही एक नेगेटिविटी के रूप में रही है। हमेशा ही वातावरण को दूषित करने के रूप में उनके योगदान रहे हैं। इस प्रकार से जब इसी पैगाम को दोहराया जाता है जो संतों महात्माओं ने जो दिया और उस तरफ बढ़ने की प्रेरणाएं दी, तो इसको बार बार महापुरुष संत जन दोहराते हैं ताकि इंसान इस बात को समझे कि वो क्या देन दे रहा है संसार को। उसने अपना आप संवारा, उसने औरों के लिए क्या महत्वपूर्ण योगदान दिए, किस प्रकार का वातावरण वो स्थापित कर रहा है। इस तरह से ये एहसास कराने के लिए, ताकि इंसान जिस रास्ते पे चल चुके हैं उस रास्ते से कहीं कदम रुक जाएं, मुड़ जाए मुख उसका उस और जिस तरफ उजाला, जिस तरफ प्यार, जिस तरफ करुणा, जिस तरफ कल्याण, उस रास्ते पे चल निकले, लेकिन विपरीत दिशा की तरफ जाने वाले जाते चले जाते हैं। लाख कोई बताए, लाख कोई समझाए, लेकिन उससे उनके कदम रुकते नहीं हैं। ऐसे मद में चूर होते हैं, उन्हीं के भलाई की बात जितनी मर्जी की जाए, लेकिन उस प्रकार से उस बात को वो अपनाते नहीं हैं, स्वीकारते नहीं हैं, और नतीजा ना अपना कुछ बना और ना ही औरों को कोई सुंदर देन दी, ना ही उजाला जीवन में आया, ना ही आत्मा का कल्याण हुआ, तो किसी प्रकार से लाभ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी उस रास्ते को कोई छोड़ने को तैयार नहीं होता है। इस प्रकार से ऐसी अज्ञानता और ऐसी नासमझी और ऐसी हूढ़मती, ये हर युग में, हर दौर में ये देखने को मिलती आ रही है। तो आज यहाँ पर मिल बैठकर दोनों ही पहलुओं के ऊपर एक ध्यान अग्रसर किया जा रहा है। जो चयन शक्ति दी गई, हर किसी को चुनना है किस मार्ग पर चलना है, किस रास्ते पे चलना है। ये दोनों प्रकार के रास्ते, एक उजाले वाला अंधकार में, एक भटकन वाला, एक मंजिले मकसूद तक पहुंचाने वाला, एक प्यार का मार्ग, एक नफरत का मार्ग, एक भाईचारा स्थापित करने वाला मार्ग, भाईचारे से युक्त होकर, उस भावना से युक्त होकर भाईचारे को बढ़ावा देने वाला मार्ग, एक है कदम कदम पर दीवारें खड़ी करना और दूरियां पैदा करना, सभी के मुख भिन्न भिन्न दिशा की तरफ, इस प्रकार से दोनों प्रकार के मार्ग ये हमेशा ही एक दर्शाए गए हैं महापुरुषों द्वारा, इंसानों को देखकर कि वो वाकई ही इस प्रकार से ऐसे अलग अलग मार्ग पर चलते हैं। इसीलिए कहा कि इनका मार्ग और है, उनका मार्ग और, कि भिन्न भिन्न मार्ग हैं। है तो दोनों इंसान पांच तत्व के बने हुए, उसके भी आत्मा है, उसकी भी आत्मा है, उसका भी मन है, उसका भी मन है, उसका भी दिमाग है, उसका भी दिमाग है, सोच वो भी आती है उसको, वो भी सोचता है दिमाग के द्वारा, दिल के भाव उसके भी हैं, दिल के भाव उसके भी हैं। तो ये शरीर हैं, पांच तत्वों के बने हुए हैं, आत्मा भी है, मन भी है, लेकिन दोनों की अवस्थाओं में ज़मीन आसमान का अंतर है, सोच में विचारों का अंतर है, भावनाओं का अंतर है, दृष्टि का अंतर है, और वही अंतर कहाँ से कहाँ ले जाता है एक इंसान को, एक मंजिले मकसूद को पा लेता है और एक भटकता ही रहता है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रहने वाले, भिन्न भिन्न नज़रिए वाले, वो वास्तविकता में ज़मीन आसमान का अंतर जिसको हम कहते हैं, स्वर्ग और नरक का जिसको अंतर हम कहते हैं, मानवता और दानवता का जो अंतर हम कहते हैं, उसी को ही दर्शाया गया है कि इंसान तूने चुनना है, ये दिमाग दिया गया है तुझे, क्या तू चुनता नहीं है, चयन करता नहीं है तू? अगर तेरे सामने खाना परोस कर थाली में रखा जाए, उसी थाली में अगर कंकर पड़े हुए हैं और भोजन भी पड़ा हुआ है, सब्जी पड़ी है, दाल पड़ी है, खीर पड़ी है, तो क्या वहाँ तू चयन नहीं करता? क्या तू वहाँ तू कंकर उठाकर मन मुख में डालता है, या फिर कंकर को एक तरफ फेंक कर और उस स्वादिष्ट पदार्थों का ही सेवन करता है? क्या उस वक्त चयन नहीं तूने किया? इसी प्रकार से एक एक चीज़ को गिनते जाएं, वहाँ पर हम चयन करते हैं कि हम जानते हैं कि ये एक भलाई का है, कंकर मुख में डालेंगे तो पेट में खराबी होगी, किसी और ऑर्गन को ना नुकसान पहुंच जाए, इसलिए उसको एक तरफ करते हैं, मुख में नहीं डालते हैं। एक विशाला गंदगी से भरा हुआ जल का गिलास हमें दिया जाए और एक स्वच्छ जल का भरा हुआ गिलास दे दिया जाए, तो स्वच्छ वाले को ही पकड़ेंगे, उस मैले को नहीं पकड़ेंगे कि इसमें कीटाणु, बीमार हो जाऊंगा। तो पदार्थों के लिहाज से, दुनियावी उन सिलसिलों के लिहाज से तो चेतन है, वहाँ पर भी चयन की पूरी पूरी गुंजाइश, और वहाँ तो ठीक ठीक चुन लेता है, लेकिन जो वास्तविक जीवन है, इसको जीवन जीने का सलीका और ढंग और मार्ग, वहाँ पर अक्सर इंसान भूल कर जाता है। इसीलिए महापुरुष संत जन अपने जीवन द्वारा और अपनी वाणी के द्वारा इंसान को ये बताते आ रहे हैं कि कौन सा मार्ग उत्तम है, किस मार्ग पर चलना है। ठीक है, अगर सोचता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि किस मार्ग पर चलूं, अगर ये भी कोई कह लेता है, तो संतों महात्माओं, गुरु पीर पैगंबरों ने अपने जीवन द्वारा और अपनी वाणी के द्वारा क्या साफ साफ नहीं बताया हुआ है कि किस रास्ते पे चलना है और किस रास्ते से बाज आना है, किन का संग करना है, किन के संग से अपने दामन को बचाना है? क्या ये नहीं बताया? क्या राम जी ने नहीं बताया? क्या रामचरितमानस में नहीं है? क्या गीता में नहीं है? क्या पाक कुरान में नहीं है? क्या बाइबल में नहीं है? क्या कबीर जी की वाणी में नहीं मिलता हमें? हर किसी में, हर पैगंबर, हर महात्मा, हर संत, सब ने बताया है और सब एक मत हैं। एक मत है कि कहीं इस भी हम दलील दे दें कि कहीं पर उनकी माने या उनकी माने, हम उन पहलुओं को ले लें, अगर प्यार भरा जीवन जीने की बात कर लें तो कहाँ पर फ़र्क है? क्या राम जी कहते हैं प्यार से रहो, और क्या हज़रत ईसा मसीह जी कहते हैं कि नफ़रत से जियो? ना ही हज़रत मोहम्मद साहब कहते हैं, ना ही गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, और ना ही कबीर जी कहते हैं, ना रविदास जी कहते हैं, ना मीराबाई कहती है। कोई भी तो नहीं कह रहा है कि नफ़रत से जियो, घृणा करो, वैर करो, भाषाओं के आधार पर करो, जाति के आधार पर करो, मज़हबों के आधार पर करो, संस्कृतियों के आधार पर करो, रीजनलिज्म को मुद्दा बनाकर उस आधार पर नफ़रत करो। कहाँ पर इसको उत्तम माना है? सब के सब एक मत के प्यार, प्यार भरा जीवन जीने में ही अहमियत है। इसी प्रकार से अगर विनम्रता और अभिमान को गिने तब भी एक मत है कि विनम्रता की अहमियत है। अगर संकीर्णता और विशालता की बात करें तो किस पैगंबर के बारे में कहेंगे कि उन्होंने कहा कि नहीं, तंग दिल वाले रहो, यही उत्तम अवस्था है? नहीं, हर एक कह रहा है कि विशाल हृदय वाले ही उत्तम हुआ करते हैं। मीठी वाणी और कड़वी बोली, किस पैगंबर ने कहा कि कड़वे बोल बोलो? फिर हैरानी होती है कि इसकी माने या उसकी माने। जो बेसिक्स हैं, दास अक्सर कहता है कि जो बेसिक्स, एक परमात्मा ईश्वर निराकार क्या कह लें, सत्य जिसको कहा है, ये भी एक है, सब कह रहे हैं। और इन जिन भावनाओं का, जिन गुणों की बात हो रही है, सब उस पर एक मत है। तो ये है बेसिक्स, लेकिन बेसिक्स की तरफ अक्स जाते नहीं हम। जो ऊपर ऊपर है, जो कहीं पर संस्कृतियां बन गई, कुछ हालातों के कारण कुछ स्थितियां बन गई, उस समय कुछ फैसले लेने पड़े हालातों को देखते हुए। कहीं पर रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले, वहाँ पर कुछ अनेकों प्रकार की मजबूरियाँ, जहाँ इतनी सहूलतें नहीं, और फिर हालातों का कुछ ऐसा बनना, वहाँ पर कुछ फैसले लिए गए, लेकिन वो एक उसका कुछ और पहलू है। जो मूल था, जो एक बेसिक्स हैं, उसमें अंतर नहीं, लेकिन हमने उसको अहमियत दी ज़्यादा, और बेसिक्स को हमने कोई कीमत नहीं उसकी डाली, उसको हमने कोई अहमियत नहीं दी। इसलिए तफरके, मेरा पैगंबर तेरा पैगंबर, मेरा धर्म ग्रंथ तेरा धर्म ग्रंथ, इस प्रकार से स्थानों और सभी सिलसिलों में ऐसे उलझे कि वो एक हमारी अवस्था ना बन पाए, जिसको हम आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल कहते हैं, जो एक सही इंसानियत वाली है, मानवता वाली है, वो अवस्था नहीं बन पाई हमारी। तो इसलिए महापुरुष एहसास कराते हैं कि कहाँ भूले पड़े हैं। किसी पैगंबर को मानते हो, किसी महापुरुषों की वाणी को पढ़ते हो, सब के सब एक मत हैं, लेकिन तुम वहाँ तक तो पहुँच नहीं रहे हो। और जिसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है, जो कहीं पर उसके पीछे बैकग्राउंड क्या रही है, उसको उस रूप में तो जाना नहीं है। समय बदले, स्थितियाँ बदली, हालात बदले, लेकिन तुम वहीं के वहीं खड़े हो, ये ना जानते हुए कि उस समय की कुछ मांगे रही होंगी, लेकिन तब्दीलियां कहां से कहां आ गई, लेकिन फिर भी तुम वहीं के वहीं हो। इसीलिए इसको ही हम पिछड़ापन कह देते हैं, इसी को अज्ञानता कह देते हैं। ना जानने के कारण अनेकों अनेकों भ्रमों और भ्रांतियों में फंसे रहते हैं। इसी प्रकार से अनेकों प्रकार के भ्रम और भ्रांतियों में हम रह जाते हैं। जिस प्रकार से जैसे बेसिक्स की बात कही, हम जो बाकी है उसको अहमियत देते हैं। एक मिसाल ध्यान में आती है, जिस प्रकार से हम निराकार पारब्रह्म परमात्मा, ये सत्य शाश्वत और ये डोलायमान संसार, आने जाने वाला संसार, तो इसकी मिसाल जब देते हैं कि किस प्रकार से एक आसमान में बादल और आसमान में ही चांद, तो चांद होता है और बादल होते हैं, तो क्या होता है कि बादल उड़ रहे होते हैं, रफ्तार से भाग रहे होते हैं, लेकिन कभी हम ध्यान से देखें कि बादल भी हैं और चांद भी हैं और बादल चल रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो महसूस क्या होता है? महसूस ये होता है कि चांद भाग रहा है। किसी प्रकार से हम कई दफ़ा ऐसे भ्रम में आ जाते हैं। इसी कारण इतने बड़े एक भूल कर बैठते हैं कि जो कायम दायम रहने वाला है उसको हम उतनी अहमियत नहीं देते और चलायमान को हम इतनी अहमियत देते चले जाते हैं। अहमियत किसकी है ये महापुरुष संत जन बताते हैं। इसी प्रकार से ये बात जिसको समझ आ जाती है, जो समझता है इस बात को कि ये बादल ही हैं जो भाग रहे हैं, चांद थोड़ी इतनी रफ्तार से भागता है। ठीक है, रोटेशंस चल रही हैं, धरती की चल रही है, चांद की चल रही हैं, लेकिन जिस तरह से नज़र आ रहा है इस तरह से नहीं, ये तो बादल ही भाग रहे हैं। तो कहने का भाव, जो ये बात जानता है वो इस भ्रम में नहीं आता है। इसी प्रकार से कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जन वो इस प्रकार से इसी सच्चाई को सामने लाते हैं। वो केवल ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर की बातें नहीं, ये मूल की तरफ ले जाते हैं, ये तत्व की तरफ ले जाते हैं, तत्व की तरफ ले जाते हैं। और जैसे कबीर जी जैसे संतों ने कहा है कि एक सार सार को पकड़ लो और थोथा दिए बहाए, कि सार को गह लिया, सार को पकड़ लिया और थोथा दिए बहाए, लेकिन हम सार को छोड़ देते हैं और थोथे को पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार से ऐसी ऐसी नादानियां करते हैं इंसान, जिसका महत्व है उसको तज देंगे, उसको छोड़ देंगे, और जिसका महत्व उसके मुकाबले में नहीं है उसको हमेशा ही अहमियत जीवन में देते चले जाते हैं। तो इसीलिए महापुरुष बार बार ये आईना सामने लाते हैं, ये बार बार ये सत्य सामने लाते हैं, ताकि इंसान समझ जाए। इंसान समझेंगे तभी संभलेंगे, वरना संभलना संभव नहीं है। जैसे वो शायर का शेर कि होश की बातें करूँगा होश में आने के बाद, होश में आने से पहले मुमकिन ही नहीं है। होश में आते हैं ताई समझदारी की बात, संभलने की बात, बेहोशी में, नशे में कहाँ पर होश की बातें। इसीलिए जब समझ में आती है बात तभी संभलते हैं, वरना संभलना संभव ही नहीं है। एक बात समझ में आ गई तो कहते हैं बस अब बात समझ में आ गई, अब तो संभाल लूँगा मैं अपने आप को, अब बात समझ में आ गई है। तो समझ गए तो संभल गए, लेकिन अगर समझे ही नहीं तो संभलेंगे क्या? अगर समझे ही नहीं एक तत्व को तो कहाँ पर कल्याण होगा, कहाँ पर उस दिशा की तरफ जाएंगे, कहाँ पर उन भावनाओं से युक्त होंगे, कहाँ पर वो नज़रिया होगा। इसलिए महापुरुष संत जन यही एक पैगाम, यही एक संदेश हर मानव हर इंसान को दिए चले जा रहे हैं और हमारे सामने बार बार वो पहलू लाते हैं जिसकी अहमियत है, उसको अपनाने की प्रेरणा देते हैं और उन पहलुओं को भी दिखाते हैं जो नुकसानदायक हैं और उससे दामन अपना छुड़ाने की प्रेरणा देते हैं। यही प्रेरणा देते हैं कि हमेशा ही हम उन भावनाओं से युक्त रहें जो संतों महात्माओं की भावनाएं, यानी कि प्यार वाली, करुणा वाली, दया वाली, स्नेह वाली, एक दूसरे के काम आने वाली, दूसरे को खुशी देने वाली, गिरे हुए को उठाने वाली, रोते हुए को हंसाने वाली, इन भावनाओं से अपने हृदयों को युक्त रखना है और उन्हीं भावनाओं के अंतर्गत इस जीवन की यात्रा को तय करना है। हरगिज़ हमने वो रास्ता नहीं अख्तियार करना जो गिराने वाला होता है, जो दिलों को दुखाने वाला होता है, जो हंसते हुए को रुलाने वाला होता है, जो उजाड़ने वाला होता है, जो वातावरण को खिंचाव और दूषित करने वाला होता है, तो उससे हमने अपने दामन को बचाए रखना है। इस प्रकार से आज भी इस सत्संग में इन्हीं पहलुओं का जिक्र हो रहा है ताकि हम भी सोचें विचारें, वरना तो समय तो बीत ही रहा है और ये बीत भी जाएगा, ये किसी के रोके से रुकने वाला नहीं है। तो हम क्यों ना अपने आप को संभाल लें, जाने के वाकई अहमियत किसके कारण होती है जीवन की, किस में कल्याण छिपा हुआ है, एक दूसरे के हक को छीनने की अहमियत मानते हैं हम, लेकिन उसकी बजाय ये माने, इस मान्यता से युक्त हों कि वाकई ही एक दूसरे के हक को छीनने में नहीं बल्कि त्याग करने की अहमियत है, दूसरे की सेवा करने की अहमियत है। इस प्रकार से तुम्हारा रुतबा ऊंचा होता है, इस प्रकार से तुम्हें फैलाव मिलता है। एक मानव जाति की बिरादरी का अंग हो तुम, तो मानव परिवार का अंग हो तुम, तो ये एक एक्सपेंशन तुम्हारी, जैसे अंग्रेज़ी में कहावत है, इफ़ यू एक्सटेंड योर हैंड यू आर नॉट जस्ट एक्सटेंडिंग योर हैंड, यू आर एक्सटेंडिंग योर सेल्फ, कि तुम अपने अस्तित्व को एक्सटेंड कर रहे हो, उसको एक्सपेंड कर रहे हो। इस प्रकार से एक अपने आप उस इकाई, केवल अपने आप तक सीमित ना रहकर, केवल अपने उस किसी खुदगर्जी तक सीमित ना रहकर, तुम बल्कि औरों के काम आने के जज्बे रख रहे हो, यानी कि तुम अपने आप को और फैलाव दे रहे हो। और वाकई ही संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों के जो शिक्षाएं हैं वो इसी तरफ ही तो प्रेरित करते हैं कि हमने उस विशालता की तरफ बढ़ना है, संकीर्णता में नहीं रहना है। इस प्रकार से ये फैलाव देना अपने आप को, इसीलिए भक्त महापुरुष ऐसा फैलाव देते हैं कि किसी को एक विपरीत भावना से नहीं देखते, वो हर किसी के प्रति शुद्ध भाव रखते हैं। इसीलिए ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई, कि कोई पराया नहीं, कोई बेगाना नहीं, सगल सगल कहते हैं सब, सगल संग हमको बनाई। बात वही कि जब खुद हकीकत के वाकिफकार हो गए, खुद इस विशाल परम सत्ता के साथ नाता जुड़ गया, इसका बोध हो गया, तो फिर वो एक्सपेंशन संभव हो गई। अब अपने आप तक सीमित नहीं, सगल संग हमको बने आई, कि कोई पराया नहीं है, कोई बेगाना नहीं है, केवल एक भाषाएं भिन्न होंगी, पहरावे भिन्न होंगे, संस्कृतियां भिन्न होंगी। तो इस प्रकार से ये बात समझ गए जब, तो फिर वास्तविकता में सलीका हमारा फिर वैसा बन जाएगा सलूक करने का, सलीका और सलूक, कि वो सलीका जब मिल गया तो फिर सलूक भी हम वैसा करने लग पड़ेंगे, जहाँ पर वैर के साथ नहीं, प्यार के साथ पेश आएंगे। तो आओ सात संगत, यही अरदास यही प्रार्थना है कि दातार कृपा करे, सभी को शक्ति दे, सामर्था दे, सभी को सुबुद्धि दे, ताकि सभी समय रहते हुए ही अपने आप को संवार लें और जीवन में उजाला अपने लाएं, ताकि चारों तरफ एक सुंदरता ही सुंदरता हो और सभी सुख से रहें, आनंद से रहें, चैन से रहें, यही शुभकामना यही प्रार्थना। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। सत्संग जी धन्यवाद।